क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो आए खुदावंद खुदा से कहें कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का कलाम मेरी तमाम रूहानी जिस्मानी माली और दुनियावी तमाम काविशों को, हर तरह के बुख्तान को, हर तरह की मुश्किलात को दूर करने और समझने और उन पर गालब आने का वसीला ठहरे। सो खुदावंद खुदा के हजूर खुदावंद को पुकारना शुरू करेंगे। हर एक जुबान खुदावंद को पुकारे, क्योंकि उसने कहा कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातों का मकाशवा क्या करूंगा, जाहर करूंगा। हम सब दुआ करेंगे, कोई भी जुबान बंद ना हो। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा तेरे हुजूर आता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ आज की शाम के लिए। खुदावंद खुदा तेरे बंदों बंदियों के लिए जो तेरे नाम से कहलाते हैं, इन मुकद्दसीन के लिए जो खुदावंद खुदा तेरे लोग हैं, खुदावंद खुदा इन पाक खुदावंद खुदा मुकद्दसीन के लिए जो यीशु के नाम में कहलाते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। आज की शाम खुदाऊं खुदा हर सुनने वाले कान पर खुदाऊं खुदा तेरे बर्रे यीशु मसीह का लहू चाहता हूँ। हर खुदाऊं खुदा दिमाग पर तेरे बर्रे यीशु मसीह का लहू चाहता हूँ। हर एक खुदाऊं खुदा दिल पर तेरे खुदाऊं खुदा कुदरत वाले हाथ को चाहता हूँ। तेरा पाक रूह खुदाऊं खुदा इस जगह पर कसरत से जुम्बश करे, बथेरे जुए बंधन टूटे और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया
हालेलुया।
यीशु के लिए जरा जोरदार तालियां आ जाएंगी। खुदावन की तारीफों के खुदावन ने दोबारा मुमकिन किया कि आप सबके दरमियान आकर दोबारा रूबरू खुदा के कलाम में से सीखा जाए। सो आज की शाम मैं सोच रहा था कि कौन सा पैगाम दिया जाए, क्योंकि काफी देर हो चुकी है यहां पर वापस आए अमरीका से। तो मैं दुआ कर रहा था, सोच रहा था, और बाइबल मुकद्दस में बहुत से मौजजात हैं। कितने हैं जी? बहुत से मौजजात। तो मैं सोच रहा था कि खुदावंद खुदा तेरे लोगों तक कौन सी बात आज शाम पहुंचाई जाए। तो खुदा के पाक रू ने मेरे दिल में डाला कि मेरे लोगों तक क्या है जी, मौजजात की खबर सुनाई जाए। क्योंकि बहुत दफा जब हम मौजजात के बारे में बात करते हैं तो हमें सिर्फ नए अहदनामा के चंद एक मौजजात याद होते हैं, और इसलिए जब मौजजात पर गौर करते हैं तो अगर कहा जाए कि जी आपका पसंदीदा मौजजा कौन है, जैसे आज की शाम में अगर आपसे पूछूं बहनों भाइयों खुदा के बंदो बंदियों आपका पसंदीदा मौजजा नए अहदनामा में कौन सा है, तो जवाब होगा बहुत दफा खामोशी, क्योंकि शर्म आती है कि कहीं मैं गलत ना कह दूं, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा क्या है जी, ये खुदा बाप का बड़ा अजीब मौजजा। इसके अलावा और यीशु मसीह ने पानी को मैं बनाया, यीशु मसीह ने क्या किया, लंगड़ों को चलाया, यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शिफा दी। बहुत से ऐसे 8 से 10 मौजजात क्या आते हैं जी, ईमानदारों के जहन में आते हैं, लेकिन बहुत दफा हम पुराने अहदनामा के मौजजात पर गौर नहीं करते। क्या आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस में कुल नए और पुराने अहदनामा में कितने मौजजे लिखे गए हैं? नहीं पता, आपको बताता हूं। 264 मौजजात हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं। पुराने अहदनामा में से शुरू करके नए अहदनामा तक 264 मौजजात हमें क्या है जी, मिलते हैं। और ये मौजजात मुख्तलिफ तरीके से हैं, यानी कि खुदावंद खुदा को देखते हैं कि मूसा के वसीला से, एलिया के वसीला से, यशुआ के वसीला से, दाऊद के वसीला से और दूसरे नबियों और रसूलों के वसीला से अजीब जी मौजजात करता है। और इन मौजजात को जब हम देखते हैं तो मौजजात की कुदरत क्या है, खुदा हर फितरी बात पर कुदरत रखता है, यानी कि वो पानी पर, तूफानों पर, मौसमों पर हर तरह के इख्तियार रखता है। और जब हम देखते हैं मौजजात खासकर दोबारा जी उठने के, तो पूरी बाइबल मुकद्दस में जब सवाल किया जाता है तो जी हम दवा दव क्या कहते हैं जी, हाँ जी लाजर को जिंदा किया था, एक मौजजा। हाँ जी नाइन के बेवा के बेटे को जिंदा किया था, जिसके जनाजे को यीशु ने रोक कर कहा कि ए नौजवान उठ, और उसका जनाजा, मातम का माहौल क्या हो गया जी, खुशी में बदल गया, दूसरा मौजजा। हाँ, पतरस ने एक औरत को जिसका नाम क्या था, हिरनी था, जिसे तबीता कहते हैं, इंग्लिश में टैबता कहते हैं, हाँ, उस ईमानदार को पतरस ने जिंदा किया। सो जब हम मौजजात के बारे में बात करते हैं दोबारा जी उठने के, तो हम फिर गिने चुने गिनते हैं, लेकिन पूरी बाइबल में कितने मौजजात हैं दोबारा जी उठने के? 14। पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में जब हम देखते हैं 14 मौजजात हमें मिलते हैं, जिसमें एलिया ने उस बेवा के बेटे को जिंदा किया, अलीशा के वसीला से उसके हड्डियों के साथ लगते ही मुर्दा जिंदा हो गया, और बेशुमार बहुत से मौजजात हमें नए और पुराने अहदनामा में मिलते हैं। टोटल दोबारा मुर्दों में से जुटने के कितने हैं जी? 14 मौजजात। सो इस पर और बात करेंगे और सीखेंगे, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हम 264 मौजजात को अगर हर रोज एक मौजजा सीखें, तो हमें कम से कम क्या है जी, साल में 365 दिन होते हैं, 264 दिन लगेंगे बगैर छुट्टी किए पूरी बाइबल के मौजजात को सीखने के लिए। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आज की शाम हम नए अहदनामा में से एक, रूमी सूबेदार के नौकर की शिफा को देखेंगे, जो यीशु मसीह क्या करता है, शिफा क्या देता है, बीमार के ईमान पर नहीं बल्कि जो दुआ गो है उसकी दुआ पर क्या करता है, मौजजा करता है। पुराने अहदनामा में बहुत से ऐसे मौजजे मिलते हैं, नए अहदनामा में ऐसे बहुत से मौजजे मिलते हैं जिसमें क्या है जी, जो बीमार खुद दुआ नहीं कर रहा लेकिन उसके लिए कोई और दरख्वास्त करता है और वो क्या पाता है, शिफा पाता है। सो आए मेरे साथ निकालें जो बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं, मत्ती की इंजील उसका 8 बाब, मत्ती की इंजील उसका 8 बाब, जब हम उसकी 5वीं आयत से पढ़ते हैं, तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह क्या है जी, अपनी जमीनी जिंदगी में जिंदगी बसर कर रहा है, और यहां पर यीशु मसीह के बहुत से मौजजात में से ये एक मौजजा है जो यीशु मसीह ने किया। जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावन, मेरा खादम क्या है जी, फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम, मेरा नौकर क्या करेगा जी, शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मुत्तहद है, और जब एक को कहता हूं तो जाता है, और वो एक को कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से के तू आ तो आता है, और अपने नौकरों से ये कर तो वो करता है। यीशु ने यह सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। जब इस वाक्या को पढ़ते हैं तो क्या है जी, एक अजीब जबरदस्त सच हमें सीखने को मिलता है। हम सब ईमानदार होते हुए क्या करते हैं, खुदावन खुदा के अजीब कामों पर हैरान और परेशान होते हैं, होते हैं ना जी, हम अजीब कामों पर परेशान होते कि खुदा ने किस तरह आसमान को बगैर डंडों के तंबू की मानद तान दिया। जबूर 19 में लिखा है कि उसने आसमान पर तंबू कोई मानद क्या किया है जी, तान दिया है। किस तरह खुदा ने सितारों को, किस तरह खुदा ने समंदर की तय को नापा, किस तरह खुदा ने पानी की हद मुकर्रर की। जब हम उसके अजीब कामों पर गौर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। जबूर 139 के मुताबिक लिखा है कि जब हम तेरे अजायब को गिनना शुरू करते हैं तो खुदावन खुदा वो रेत के जर्रों से भी कहीं ज्यादा है। ये तो हम इंसान होते हुए कहते हैं, अगर हम अपनी आंख की पुतली को शीशे में देखकर कहें तो हम कहते हैं कि वाह क्या महान कारागरी है, कितनी जबरदस्त खुदावन की कुदरत है कि उसने हमारी आंख की पुतली को बनाया है, जिससे हम देख सकते हैं, रंगों की पहचान कर सकते हैं, धीमी और तेज रोशनी में इस बात का तायन कर सकते हैं कि किस तरफ किस सिमत में जाना है। हम अपने हाथ को देखकर कहते कि पांच उंगलियां ना सिर्फ खाने के लिए बल्कि बचपन में किसी को चलाने के लिए और मुश्किल में फंसे हुए किसी इंसान को बचाने के लिए और किसी को शाबाश देने के लिए थापी के तौर पर और किसी को किसी दुश्मन से बचाने के लिए हथियार के तौर पर, एक ही हाथ है और उसके अजीब अजीब इस्तेमाल है, काम है। सो हम जब खुदा के कामों को देखते हैं तो हम हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन आज एक बात सिखाना चाहता हूं, खुदा हमारे ईमान को देखकर क्या होता है जी, हैरान होता है। इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, इस सूबेदार को देखते हैं। सूबेदार क्या है जी, एक सूबेदार को इख्तियार होता था रूमी सिपाहियों के ऊपर, क्या होता था, इख्तियार होता था। वो उस इख्तियार में जिसको कहता था खड़ा हो जा, बैठ जा, चले जा, ये कर वो कर, वो बगैर बिले चिचक क्या करता था, टाइम को नहीं देखता था क्या उसकी जरूरत है। वो 2400 घंटे अपने सूबेदार की ताबेदारी में तैयार रहता था। यहां पर हम देखते हैं ये इख्तियार वाला बंदा समझता है कि उसके ऊपर एक इख्तियार वाला है जिसे कादरे मुतलिक कहते हैं। वो रूमी शहनशाह से भी बड़ा शहनशाहों का शहनशाह, बादशाहों का बादशाह है। वो उसके पास जाता है और उसको कहता है क्या, खुदावंद मेरा एक नौकर है जो क्या है जी, फालज का मरीज है, जो बीमारी में है, कठिन उसकी तकलीफ है, वो इस हालत में है कि तेरे पास आ भी नहीं सकता, इसलिए मैं उसके लिए आता हूं। जब हम इस बंदे को देखते हैं हमारा ईमान बढ़ना चाहिए। जब हम इस बंदे को देखते हैं हमारे ईमान को ज्यादा तकवीयत मिलनी चाहिए, हमारा ईमान इससे ज्यादा बढ़ना चाहिए। जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं कि अगर इस सूबेदार के ईमान के वसीला से उस नौकर की शिफा हो जा सकती है, हमारे ईमान से खुदा क्या कुछ कर नहीं सकता। सो ये सूबेदार दरख्वास्त करता है, खुदावंद खुदा मेरा नौकर है, उसकी शिफा के लिए मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूं। और खुदावंद खुदा कहता है हां मैं आता हूं। हम सब की ख्वाहिश है कि यीशु मसीह हमारे दरमियान आए, यीशु मसीह हमारे नजदीक आए, हम उसके छूने को महसूस कर सकें, हम उसके वजूद को क्या सकें जी, टच कर सकें। याद है आपको मुर्दों में से जी उठने के बाद शिगिर्दों पर जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम ने आकर खबर दी, वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, हाँ मैंने उसे देखा है। और सारे शिगिर्दों के दिल में जो तजस्स था, जो ख्वाहिश थी, जेड़ी उन्होंने दिल दी सब तो वड्डी की कहते हैं जी, मनोकामना जिन्हों कहते हैं, वो की सी, असी उन्हें देखना चाहते हैं। वो तो मसलूब हो चुके साढ़े सामने, उसे नेजा मारिया गया, उसनू कोड़े मारे गए, उसके सर ते ताज रखा गया, उसने साडे सामने अपने दम दे दिते, ते वह किवें मुर्दियां च जी उठ सकता। मरियम ने कहा हाँ अपने कहे दे मुताबक जी उठिया है, आओ मेरे नाल देखो, मैं उन्हें देखिया, मैं उन्हें छू के देखिया, वो खुदावंद ही था। और सारे शगिर्द क्या हैं, इस बात के मुंतजर हैं कि उसे छूएं। उसके तमाम शिगिर्दों की ख्वाहिश है कि वो उनके दरमियान हो। हम एक वाक्य पढ़ते हैं तोमा का, तब तमाम शिगिर्दों ने देख लिया, यीशु मसीह ने उनके साथ रोटी खाई, उनको छुआ, उनसे बातें की, उनसे कहा कि छू कर देखो मैं भूत नहीं हूं। सब ने सुना, सब ने देखा, सब ने उसका हजूरी का मजा चखा और तोमा वहां पर मौजूद नहीं था। उसने कहा मैं उसे छूना चाहता हूं, मैं उस पसली में हाथ डालना चाहता हूं, मैं उस कीलों को जो उसके हाथों में ठोके गए उसे लगाना चाहता हूं हाथ। लगता मेरा पसीना ज्यादा नजर आ रहा, अच्छी बात है, खुदावंद के लिए जरूरत पड़े तो खून और हर रोज पसीना बहाना चाहिए। यहां पर सूबेदार को देखते हैं, सूबेदार क्या कहता है, खुदावंद कहता है मैं तेरे घर आता हूं। वो कहता है नहीं नहीं खुदावंद, तू अपनी जुबान से यहां से कह ही दे तो मेरा खादम क्या करेगा जी, शिफा पा जाएगा। बेशक हम सब की ख्वाहिश है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को रूबरू देखें, लेकिन हमारे ईमान की मजबूती के लिए वाक्या क्या है? खुदावंद तू अगर कह ही दे, खुदावंद मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, मैं खुदावंद तुझ पर ईमान रखता हूँ, मेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, मेरे तमाम जुए बंधन टूट जाएंगे, मैं ईमान रखता हूँ। और ये बात क्या करती है जी? बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? यीशु मसीह इस बात पर क्या करता है? ताज्जुब करता है। ताज्जुब के लिए जो लफ्ज इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है, मार्वल, वंडरिंग, यानी कि हैरान होना, इस बात के तजस्सुस में, सोच में पड़ जाना, ताज्जुब करना। खुदावन खुदा इस गैर कौम सूबेदार की जो रूमी है, उसके ईमान को, उसके ईमान की मजबूती को देखकर क्या कहता है? ऐसा ईमान मैंने पूरे इसराइल में नहीं पाया। ये क्या है? खुदावन यीशु मसीह की तरफ से क्या है जी? एक बड़ा ही जबरदस्त एजाज है इस सूबेदार के लिए। और इस सूबेदार के ईमान से ना कि वो खुद बल्कि क्या है जी? उसका नौकर शिफा पाता है। इस सारे वाक्या में से जो सीखने का पहला सबक है, आपके ईमान से खुदा किसी को शिफा दे सकता है। आपका ईमान किसी की रहाई बन सकता है। आपकी दुआ किसी की क्या हो सकती है? बहाली हो सकती है। आज सुबह स्कूल में जब बच्चों को सिखा रहे थे, वहां पर नमान कोड़ी की बात हो रही थी कि नमान कोड़ी के घर में एक नौकरानी है, वो नमान कोड़ी अरामी फौज का सूबेदार है और उसका तलक यहोवा पा खुदा से नहीं। उसके घर की नौकरानी क्या कहती है? अगर मेरा मालिक सामरिया में होता तो खुदा का नबी जो एलीशा उस दौर में था, वो इसके कोर से इसे क्या करता? शिफा देता। वहां पर नुकरानी है जो अपने मालक के लिए दुआ कर रही है। यहां पर क्या है जी? सूबेदार है, नुकरानी है जो अपने मालक सूबेदार के लिए दुआ कर रही है। यहां पर सूबेदार है जो अपने नौकर के लिए क्या कर रहा है जी? दुआ कर रहा है, मिन्नत कर रहा है। खुदा ने पुराने अहदनामा में उस छोटी लड़की के ईमान को देखा। सूबेदार जाता है और जाकर क्या करता है? नबी के कहे के मुताबिक उस पर ईमान लाता है और उसके साथ गोते लगाते ही उसका बदन जो कोढ़ से बड़ा है साफ हो जाता है। वैसे ही यहां पर नबियों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह, नबियों के सरदार आला खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जा, तेरे लिए जो तू चाहता है हो जाएगा। और क्या होता है? यीशु मसीह कहता है कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में नहीं पाया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और आगे यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और यकूब के साथ खुदा की बादशाही में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और खुदावन यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा, जैसा तू चाहता है तेरे एतमाद के मुताबिक क्या हो जी वैसा ही हो। यीशु ने उसे सूबेदार से कहा, जा, जैसा तू चाहता है, एतमाद किया है तेरे लिए, वैसे ही हो। और क्या लिखा है? सारे मेरे साथ मिलकर करें, उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। अगर सूबेदार के ईमान से ये कुछ हो सकता है, तो हमारे ईमान से आज भी खुदा सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। इसलिए ईमान का इम्तहान क्या है जी? इम्तहान ईमान में है। आप कहेंगे ये कैसी बात कर दी पादी साहब? अगर हम अपने ईमान को जानना चाहते हैं तो ईमान ही से जांचना होगा, क्योंकि मुर्दा ईमान से हम जिंदा ईमान का तजर्बा नहीं पाएंगे। फिर कहूंगा, मुर्दा ईमान से हम जिंदा ईमान का तजर्बा नहीं पाएंगे। मौजजा हासिल करने के लिए हमें ईमान लाना होगा और अपने इम्तहान के बेशक ईमान में क्या करना होगा? ईमान रखना होगा कि मेरा जिंदा खुदा ये सब कुछ कर सकता है। तो आज की शाम मेरी दुआ है कि हमारा ईमान उस छोटी गुलाम लड़की की तरह हो कि हाँ, سامریا میں نبی ہے جو زندہ خدا کا ماننے والا وہ کر سکتا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بہن, جیسے یہ 65 چک ہے وہاں پر یوسف والا کے نزدیک, ایک اور 65 ہی ہے نا اسے کہتے ہیں جی, جہاں سے وہ باجی آتی ہے, باجی نسرین 65 چک کی رہنے والی ہے. اس کو خدا نے شفا دی اور وہ اپنے گاؤں میں جا کر سب کو بتاتی ہے کہ پادری صاحب باہر سے آئے ہوئے ہیں, آؤ. اور وہ بہت سے نہ صرف مسیحیوں کو بلکہ غیر قوموں کو لے کر آتی ہے. پچھلے دنوں میں ایک مسلم عورت آئی, پچھلے سال, اس نے کہا کہ میرے گھر میں بیماری ہے, میں خود بیمار ہوں اور ہمارے گھر میں بدرو ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ سارا خوف طاری ہے اور میں ہر طرف جا چکی ہوں, ہر طرف پھر چکی ہوں, کہیں سے بھی شفا نہیں ہوئی. میں نے اس بہن سے سنا ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے, اس نے گواہی دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے کیا کیا ہے. میں اس کی گواہی سن کر یہاں پر آئی ہوں, مجھے کیا کرنا ہوگا, کون سا ہدیہ لانا ہوگا, کتنے پیسے دینے ہوں گے, کیا کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ, وہ ساری باتیں کرنا شروع کر دی. میں نے کہا کہ خدا کے حضور کوئی اور ہدیہ نہیں سوائے ایمان کے, اور وہ ایمان لائی. اور آنے والے ہفتے میں اس نے کیا کیا, آ کر گواہی دی کہ اب میرا گھر صاف ہے, بیماری جاتی رہی, امن اور سلامتی ہے. اور جو وہ دعا کرتی تھی زبور 23 میں سے سادہ سی دعا, یسوع میرا کیا ہے, چرواہا ہے. اس عورت کے ایمان سے کوئی اور عورت کیا پا گئی, شفا پا گئی. آپ کے اور میرے ایمان سے بتھیرے نجات پا سکتے ہیں. ایمان رکھنے میں ہی ایمان کی بات پوری ہوتی ہے. مردہ ایمان سے زندہ ایمان کے کام نہیں ہوتے. سو آئیں ہم خدا کے حضور جھکیں اور آج اپنی اپنی زندگی پر غور کریں اور خداوند خدا سے کہیں کہ خداوند خدا میرے ایمان کو بڑھا. کیونکہ ایک اور واقعہ ہے جو معجزہ خداوند یسوع مسیح نے کیا, وہاں پر اس کے شاگردوں نے کہا کہ جب وہ معجزہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر ایک بندہ تھا, اس بندے نے کہا خداوند خدا میں ایمان رکھتا ہوں لیکن میری بے اعتقادی بے ایمانی کا کیا کر, علاج کر. ہم یسوع مسیح کو کہنے والے بنے, ہاں خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں, تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے, تو معجزات کا خدا ہے, تو نے صوبے دار کے لیے یہ کیا کیا, تو نے بہت سے دوسرے معجزات کیے, میں ایمان رکھتا ہوں لیکن میری بے اعتقادی کا کیا کر, علاج کر. آئیں اس سے دعا کرنا شروع کریں, اسے پکارنا شروع کریں, خداوند خدا میں ایمان رکھتا ہوں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے سامنے رکھیں اور کہیں خداوند میرے سامنے اگر شک کی دیوار کھڑی ہے تو اسے گھرا دے, اگر میرے سامنے بے اعتقادی کا وہ جاتی جولیٹ کھڑا ہے تو اس کا سر قلم کر دے, اگر میرے سامنے ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے دریائے کلزم بحر کلزم میرے سامنے ہے تو اس میں سے راستہ بنا دے. خداوند خدا تو پہاڑوں کا بنانے والا اور پہاڑوں میں سے راستہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند خدا تو بادلوں کو بنانے والا اور بیابان میں بادلوں کو برسانے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند خدا تو مردہ ہڈیوں میں جان ڈالنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے. خداوند خدا تو اندھوں کو آنکھیں, بہروں کو کان, بدرو گرفتہ کو آزاد کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. آج کی شام تیرے حضور آتا ہوں میری بے اعتقادی کا کیا کر, چارہ کر, میرے ایمان کو بڑا. اور خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھ میں مسرور رہ تو میں تیرے دل کی مرادوں کو کیا کروں گا, پورا کروں گا. اور وہ مرادیں پورا ہونے میں ایک ہفتہ, ایک مہینہ, ایک سال, دو سال, تین سال, 10 سال, 12 سال, 50 سال بھی لگ سکتے ہیں. اس لیے خداوند خدا پر کیا رکھیں, ایمان رکھیں, خداوند پر اعتقاد رکھیں, کیونکہ وہ دل کی مرادوں کو پورا کرنے والا خدا ہے. اے باپ اپنے لوگوں کے دلوں کو چھو, ان کے تمام مشکلات میں خداوند خدا ان کا حل مشکلہ بن, اور خداوند خدا تیرا نام عزت اور جلال پائے, اور اس صوبے دار کی کہانی سے ہمارا ایمان اور زیادہ تقویت, قوت, طاقت اور خداوند خدا پختگی پائے. یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں. ہاللویا, ہاللویا, یسوع کے لیے ذرا زوردار تالیاں بجائیں.